सत्यवचन
कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए। इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए सुन लेते हैं एक मधुर गीत।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर। कदम राहों में इसीलिए ना सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने आशीषों का अनुभव पत्रों के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हम पहले राजाओं की पुस्तक उसके 7 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि सुलेमान ने मंदिर बनवाकर दाऊद का स्वप्न पूरा किया और आज हम अध्याय 7 में देखेंगे कि सुलेमान ने मंदिर ही नहीं बनवाया परंतु उसने अपना महल, लबानोनी वन और फिरौन की पुत्री का महल भी बनवाया। इसमें उसने मंदिर के ओसारे का भी निर्माण करवाया, फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनवाया और पीतल की 10 हौदियां बनाई और मंदिर के लिए 10 सोने के दीपदान बनवाए। आज हम इससे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में देते हैं। यद्यपि कि हम लोग दुर्बल और कमजोर लोग हैं, इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हम सब पापी हैं, और यह सच है कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन यह आपकी दया है कि आप हमें जीवन दान देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सब श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी आज हम आपके वचन से सीखें प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन से निराश हैं। वे सोचते हैं कि उनसे कोई भी प्रेम नहीं करता। हो सकता है कि उनके पारिवारिक जीवन में बिखराव है, उनके आर्थिक समस्याएं हैं और व्यक्तिगत समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, बीमारियां हैं, आर्थिक तंगी है, रोजगार की समस्या है, जीवन साथी की समस्या है। प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अपनी कृपा दृष्टि करें, ताकि वे इस बात को जान जाए कि आप सृष्टि करता है, जिसे मनुष्य हल नहीं कर सकता उसका समाधान आपके पास है। आप सबसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। आज हमारे भाई बहनों से आप बातचीत करें, आप उन्हें शांति प्रदान करें, अपने जीवन में उन्हें प्रभु आप जगह दें, ताकि वे आपको ग्रहण कर सकें। इस समय हम सबको, विशेष करके हमारे श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसके पूरा करने में 13 वर्ष लगे। मित्रों, ध्यान दीजिए, मंदिर बनवाने में 7 वर्ष लगे और उसका महल बनवाने में लगभग इसका दोगुना समय लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि महल बहुत ही वैभवशाली रहा होगा। पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह तो देवदारों के खंभों की 4 पाति पर बना और खंभों पर देवदारों की कड़ियां धरी गई। सुलेमान ने लबानोनी वन नामक भवन बनवाया जो उस वन था। संभवतः वह अवकाश के लिए वहां आता था। लिखा है कि उसकी लंबाई 150 फुट की थी, फुटबॉल मैदान की लंबाई आधा, और उसकी चौड़ाई 75 फुट की थी और ऊंचाई 45 फुट की। उसके आधार में देवदार के खंभों की 4 पंक्तियां थी जिनके ऊपर देवदार के लट्ठे थे। सोर के राजा ने पत्थर और लबानोन के देवदार भेजे थे। आज तो ऐसे लंबे और ललित्यपूर्ण देवदार यदा कदा ही दिखाई देते हैं। वह संपूर्ण क्षेत्र ही आज वृक्ष रहित हो गया है, परंतु उस युग में वह घना वन था। हम पहले राजा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसी के रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढब से बना। फिर उसी ओसारे के ढब से सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। मित्रों, उसी ढंग से अर्थात वह भी विभूषित और विस्तृत था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने फिरौन की पुत्री को कुछ विशेष महत्व प्रदान किया। वह हर एक रानी के लिए ऐसा महल नहीं बनवा पाया था। यदि वह चाहता तो 1000 महल बनवा देता। वह तो सरकारी आवासीय योजना के समान होता। मित्रों, आइए हम देखें शिल्पकार हीराम। पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था, और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। यह राजा हीराम नहीं था, वह पीतल का शिल्पकार था। उसने लोहे पीतल और सोने के सब सामान एवं नक्काशी तैयार की। यही सुलेमान चाहता भी था। विस्तृत विभूषा उस समय की समृद्धि और शांति का प्रमाण है। शांति और समृद्धि के युग में कला का विकास होता है। सुलेमान के युग में शांति और बहुतायत थी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 7:21 में पढ़ते हैं, उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, फिर बाएं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। याकीन का अर्थ है परमेश्वर स्थिर रखेगा और बोआज का अर्थ है इसमें ही सामर्थ है। मित्रों, आप देखेंगे कि कुछ भजन हैं जिनमें दृढ़ता और सौंदर्य के विचार व्यक्त हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता 96 उसके 6 में लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य हैं, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। सामर्थ से यहाँ अर्थ है उद्धार, परमेश्वर अपनों का उद्धार करने में सक्षम है, और शोभा से अभिप्राय है आराधना की शोभा। हमें पवित्रता की शोभा में परमेश्वर की आराधना करना है। मंदिर में ये खंभे मुख्य हैं। आत्मिक रूप से देखा जाए तो ये दो खंभे परमेश्वर के प्रत्येक उपासक के जीवन में होना आवश्यक है, अर्थात उनकी उपासना में। यदि आप परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो आप पाप से मुक्त कराने में परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव होना आवश्यक है। मित्रों, इसके बाद ही आप पवित्रता की शोभा में आराधना करने में सक्षम होंगे। आराधना के लिए एक सुंदर पवित्र स्थान हो तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता। मेरे विचार में तो यह एक अच्छी बात है। एक सुंदर आराधना स्थल आराधना के लिए प्रेरणादायक होता है, परंतु उससे आराधना की प्रेरणा मिले यह सदा संभव नहीं, और निश्चय ही वह आराधना का विकल्प नहीं है। मेरे मित्रों, हम पवित्रता की शोभा में आराधना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब हमें उसकी उपस्थिति का बोध होना आवश्यक है। हमारे कमियों का बोध होना आवश्यक है, तब हम परमेश्वर को उसकी परिपूर्ण महिमा और सुंदरता में अंतर्ग्रहण कर पाएंगे। यशाया का यही एक अनुभव था। जब उसने मंदिर में परमेश्वर का दर्शन पाया था तो उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान और परमेश्वर की ज्योति में उसने स्वयं को देखा तो पाया कि वह अशुद्ध था। अतः उसने कहा, जिसे हम यशाया नबी की पुस्तक 6:5 में पढ़ते हैं, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। याकीन और बोआज सच्चे आराधकों के प्रतीक हैं, अर्थात एक उद्धार प्राप्त आत्मा जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। मित्रों, मैं यह जानता हूं कि संगीत के क्षेत्र में मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु मैं इसी बात पर बल देता हूं कि जो संगीत आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं उभारे तो वह संगीत आराधना के योग्य नहीं। आज आराधनालयों में संगीत की कमी नहीं है, परंतु वह आराधक को आराधना के लिए तैयार नहीं करता है। मैंने अपनी सेवा और स्वभाव में देखा है कि संदेश से पूर्व गाया गायन मंडली या गायक का गीत परमेश्वर के वचन के लिए प्रायः विनाशकारी हुआ है। हमें यह बोध होना आवश्यक है कि परमेश्वर की आराधना इस सत्य पर आधारित है कि वह बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। मेरे मित्रों, सुलेमान ने मंदिर के हौज भी अधिक बड़े बनवाए थे। आइए हम देखें, पहले राजाओं की पुस्तक 7:23 लिखा है, फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर तक 10 चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 के सूत के बराबर था। मेरे मित्रों, यह बड़ा हौज ढाले गए पीतल के 12 बैलों पर रखा हुआ था और 3-3 बैल प्रत्येक दिशा में मुंह किए हुए थे। उसके किनारे के नीचे सोसन के फूल बने हुए थे। यह हौज याजकों के स्नान के लिए बना हुआ था। मिलाप वाले तंबू में तो एक ही हौज था। यहाँ अनेक हौदियां थी और सौंदर्यकरण के साथ थी। तब हम आगे देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 38 पद में, और उसने पीतल की 10 हौदी बनाई, एक एक हौदी में 40-40 बद की समाई थी, और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी, और 10 पायों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। मेरे मित्रों, 10 हौदियां इस उद्देश्य बनाई गई थी कि होम बलि की सामग्री धोई जाए। मन के शोधन के लिए आकर और सुंदरता से अधिक कुछ आवश्यक है। आज अनेक कलीसियाओं में आकर्षक आराधनाएं होती है, परंतु वे न तो आराधकों का शोधन करते हैं और न ही उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लाते हैं। इन आराधनालयों के द्वारा न तो आत्मा को नवजीवन प्राप्त होता है और न ही चित्त को शांति और आनंद प्राप्त होता है। संसार की सब हौदियां किसी का भी पाप भर्जन नहीं कर सकती हैं। हौदी का पानी धोता है। पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। परमेश्वर के वचन में धोए जाने का अर्थ है जीवन में वचन को व्यवहारिक बनाना। मित्रों, हम पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 48 और 49 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल। मिलाप वाले तंबू में एक दीपदान था जो मसीह का प्रतीक था। मंदिर में 10 दीपदान थे, यही संख्या में बढ़ाए गए थे, जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ अवश्य है। मित्रों, हमारे आज के समाज में प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिक अनौपचारिकता का संकट बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, एक दिन मैं रेडियो का संदेश सुन रहा था जिसमें प्रचारक ने आधे संदेश में ही प्रभु यीशु का नाम 50 से अधिक बार लिया। उसका नाम बार बार लेने का अर्थ यही है कि हम दीप दानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। मैंने अनेकों को यह भी कहते हुए सुना है कि वे प्रभु यीशु मसीह की संगति में आएंगे और उसके साथ बैठकर बातें करेंगे। मित्रों, हो सकता है कि वह ऐसा करे, मैं नहीं जानता, परंतु बाइबल में महिमामय मसीह के साथ ऐसी अनौपचारिकता का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। जब वह इस पृथ्वी पर था तब एक व्यक्ति उसके निकटतम था जो उसकी गोद में सिर रखता था, उसे झिड़कता था, उसे सुझाव देता था, वह यूहन्ना था। परंतु यही यूहन्ना इस महिमामय मसीह को देखकर लिखता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 पद में, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मेरे मित्रों, मेरे विचार में मैं और आप इसी स्थिति में होंगे जब हम मसीह की उपस्थिति में आएंगे। मेरे प्रियो, हम दीप दानों की संख्या ना बढ़ाएं, उसके साथ अनौपचारिकता के संबंध बनाने का प्रयास न करें। एक वही है जिसकी स्तुति आराधना हम करते हैं, एक वही है जिसके सामने हम मुंह के बल गिर जाते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 8 में देखेंगे मंदिर का समर्पण। इस अध्याय में वाचा का संदूक नवनिर्मित मंदिर में लाया जाता है और परमेश्वर का भवन शकीना महिमा से भर जाता है। सुलेमान अपना संदेश सुनाता है और प्रार्थना करता है। तो आइए हम पहले राजा की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, तब सुलेमान ने इसराइली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इसराइलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आएं। मिलाप वाले तंबू से वाचा का संदूक अब मंदिर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करते ही परमेश्वर की महिमा मंदिर में व्याप्त हो जाती है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, तब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मित्रों, हम देखते हैं कि अपने समर्पण संदेश में सुलेमान मंदिर का श्रेय दाऊद को देता है। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17 से 20 पद में, मेरे पिता दाऊद की यह मंशा तो थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी मंशा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मंशा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की वाचा के संदूक को एक अस्थाई स्थान में रखने की इच्छा दाऊद के मन में उत्पन्न हुई थी, जैसा कि हमने दूसरे शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय में देखा है। सुलेमान ने तो केवल दाऊद की योजना को पूरा किया है। अतः मेरे विचार में मंदिर को दाऊद के मंदिर की अपेक्षा सुलेमान का मंदिर कहना चाहिए। समर्पण की प्रार्थना में सुलेमान कहता है कि मंदिर परमेश्वर के नाम का एक स्थान है, जहां परमेश्वर की प्रजा उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए आएगी। यह अन्य मंदिरों की नाई नहीं है जिनमें मूर्तियां रखी होती हैं, और न ही यह परमेश्वर का निवास स्थान है। सुलेमान समझता था कि मंदिर परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी है, जैसा दाऊद ने भी कहा था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, मंदिर केवल मनुष्य के लिए परमेश्वर के दंडवत करने का और उसे बलिदान चढ़ाने का स्थान था। वह परमेश्वर से संबंध बनाने का स्थान था, यह सोचना कि परमेश्वर वहां वास करेगा। विजातीय इस प्रकार का विचार रखते हैं। सुलेमान ने कहा, सर्वोच्च स्वर्ग में तू समा नहीं सकता। जी हाँ, परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह हर जगह है, वह अपनी सृष्टि के अपरंपार है। मेरे मित्रों, यहाँ एक पद अति विचारणीय है। यह उस समय के लिए है जब इसराइल पाप करके दासत्व में जाएगा। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 46 पद में लिखा हुआ है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उनको बंधुआ करके अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएं। मेरे मित्रों, यह दूसरी ओर आपके और मेरे लिए परमेश्वर का मूल्यांकन है। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं, यह न कहें कि पाप ने पाप नहीं किया। परमेश्वर कहता है कि आपने पाप किया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस पाप से मुक्ति पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों से प्रेम किया और उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। वह हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले में वह क्रूस पर चढ़ गया और मर गया। उसने अपनी पवित्र लहू को बहाया ताकि हमारे पाप धुल जाएं। मेरे मित्रों, वह आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम है, क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा है। वह आज भी जीवित है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपसे किसी बात की उम्मीद नहीं रखता। वह चाहता है कि आप सिर्फ अपने पापों को मान लें कि आपने पाप किया है, आप पापी हैं, तब निश्चय जाने कि वह आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने अपने पापों को मान लिया है उसने उन्हें क्षमा किया है और अपना पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उसके बेटे और बेटी बन जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप मुफ्त में उद्धार को प्राप्त करें? जी हाँ, आज आपके लिए एक निर्णय लेने का समय है। मित्रों, आइए आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की निकटता में अपने पापों को मान लें और परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। मेरे मित्र, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आप इसे जानते हैं। आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे छुटकारा पा जाऊँ, लेकिन मैं छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता करें। मेरे मित्रों, आज अपने पापों को प्रभु के सामने मांग लें। प्रभु आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे भाई बहनों से प्रेम करते हैं। आप प्रत्येक के जीवन के पापों को जानते हैं, उन गुप्त भेद की बातों को जानते हैं जिसे कोई नहीं जानता, उसे आप जानते हैं। कुछ भी ऐसी बातें छिपी नहीं जिसे आप जानते ना हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, इस समय हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन अपने जीवन के उन पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, प्रभु जी आप उनके पापों को क्षमा करें। उनके मन की वेदनाओं को आप जानते हैं, उनके निराशाओं को जानते हैं, उनके कठिनाइयों को आप जानते हैं। आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें, उन्हें उद्धार प्रदान करें, अपनी शांति प्रदान करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए तेरा मन न घबराए और न डरे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहन को जो इस समय अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, आप उनके हृदय में अपनी शांति प्रदान कीजिए। उनके हर एक बुरी आदतों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें नई सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा आप उन्हें दृढ़ कीजिए ताकि एक नया जीवन अपने जीवन में जी सकें, अपने मित्रों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, अपने कॉलेज स्कूलों में, नौकरी के स्थान में एक नया जीवन वे प्रदर्शित कर सकें, एक मसीही जीवन प्रदर्शित कर सकें। आप उनके साथ हो लें, आप उनकी सहायता करें, उनके हर एक अपराधों को आप क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हर एक के जीवन को स्पर्श कर रहे हैं, आप उनके मन की वेदनाओं को देख रहे हैं, आप उनके आंखों के आंसुओं को देख रहे हैं, आप उन्हें क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और ग्रहण कर लिया है। यीशु के नाम से आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अंधियारे ज्योति शुकी